क्या सच में भैया, आज मुझे कुछ भी करने की छूट है? आप कुछ नहीं कहेंगे, मुझे रोकेंगे भी नहीं? अक्षय ने हौले से मुस्कुराते हुए इनकार में सर हिलाया और अन्वय खुशी से यूं उछला जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने अपने बाकी भाइयों को कुछ इशारा किया तो सब के सब उसके पास पहुंच गए। सबने मिलकर अक्षय का कुर्ता जबरदस्ती उतरवाया और अगले ही पल दोनों हथेलियों को हल्दी में डुबोकर वे सब अक्षय पर टूट पड़े। हाथ, पैर, गर्दन, चेहरे सबको हल्दी से सानने के बाद उन्होंने हाथ घुसा घुसाकर उसके सीने, पेट, पीठ सब पर हल्दी रगड़ दी। सर से पैर तक उसे पीले रंग में रंग दिया। शक्ल का हाल तो ये था कि उसे पहचानना तक मुश्किल था। शर्मीला स्वभाव के अक्षय बेबसी से सर हिलाकर रह गया और अब उसे अपनी कही बात पर शिद्दत से पछतावा हुआ। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अन्वय ने अपनी गैंग के साथ मिलकर अपने काम को अच्छे से अंजाम दिया, फिर साइड में खड़े सुमित को भी अपने साथ खींच लिया। अरे जीजू, आप यहाँ अकेले क्या खड़े हैं? आइए, आप भी भाई पर अपना हाथ साफ कर लीजिए, आज वो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अन्वय की लापरवाही भरी बात सुनकर अक्षय ने हौसे भरी नजरों से उसे यूं घूरा जैसे अभी आंखों से अग्नि की लपटें निकलेंगी और उसे जिंदा ही जलाकर भस्म कर देंगी। उसकी दी छूट का नाजायज फायदा उठाकर कितना खुश था वो, पर अक्षय अपना गुस्सा पी गया। आखिर कितना भी शैतान क्यों ना हो, पर था तो उसी का भाई, जो उसे जितना परेशान करता था उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार करता था। अक्षय ने अन्वय पर से निगाहें फेरी और सुमित की ओर नजरें घुमाते हुए सहजता से बोला, सुमित जी, आप क्यों पीछे रहेंगे? अगर कहीं जगह मिल जाए तो आप भी लगा लीजिए। जहां अन्वय और बाकी लड़के लड़कियां अक्षय की बात सुनकर ठहाके मारकर हंस पड़े थे, वहीं सुमित मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ गया और थोड़ी सी हल्दी उंगलियों में लगाते हुए उसके गालों से छुआते हुए रस्म पूरी कर दी। हंसी मजाक, छेड़छाड़ और ढेर सारी मस्ती के साथ हल्दी की रस्म आखिरकार पूरी हुई तो दादी ने अन्वय के संग अक्षय को कमरे में भेज दिया और साथ ही फरमान भी सुना दिया कि अब उसे अकेला न छोड़ा जाए और घर से बाहर कदम रखने पर भी पाबंदी लगा दी गई। हल्दी लगाने में सबको जितना आनंद आया, छुड़ाने में अक्षय को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बाहर रूपाली जी मेहमानों के चाय पानी का बंदोबस्त करने लगी। जयंती जी के कहने पर पल्लवी और अंतरा ने आहाना को छत पर लगे पीले रंग के शामियाने के बीच गड़े मंडप के पास रखे पाटे पर बिठा दिया, जिसके सामने हल्दी की सामग्री रखी थी। एक तरफ महिलाएं ढोलक लेकर बैठी थीं। सामूहिक गान में बन्ना बन्नी के पारंपरिक गीत के सुर छेड़े जा रहे थे तो कभी हंसी ठिठोली भी हो रही थी। मस्टर्ड कलर के खूबसूरत से जोड़े में फूलों के गहनों से सजी आहाना शर्माई सकुचाई हुई सी खुद में सिमटी बैठी थी। आसपास होती बातें सुनकर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। आदमियों को बाहर किया हुआ था और औरतें खुलकर छेड़खानी पर उतर आई थीं। मजाक मजाक में ऐसी बातें बोल जाती थीं कि वे सब तो ठहाके मारकर हंसने लगतीं, पर बेचारी आहाना शर्म से पानी पानी हो जाती। शर्म से उसका गोरा मुखड़ा सुर्ख रंग में रंग चुका था। पलकों की झालरें उसके गुलाबी गालों को चूम रही थीं। हाथ की उंगलियों को आपस में उलझाए, बेचैन घबराहट में जोरों से धड़कते दिल को थामे वो किसी जीती जागती गुड़िया जैसे वहां चुप सी बैठी हुई थी। माँ, आप ये सब छोड़िए और जाकर अनु को हल्दी लगाइए, रस्म की शुरुआत आपसे ही होनी है, पल्लवी ने जयंती जी के हाथ से ट्रे लेते हुए कहा, जो घर आए मेहमानों को चाय पानी देने में लगी थी। बहू, ठीक तो कह रही है शुक्लाइन, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहू संभाल लेगी, तुम आकर बेटी को हल्दी लगाकर रस्म शुरू करो। एक पड़ोसन ने पल्लवी का समर्थन करते हुए उन्हें हल्दी लगाने के लिए बुलाया। उनकी बात सुनकर जयंती जी के लबों पर गर्व भरी मुस्कानों भर आई। सब बहू ने ही संभाला है गुप्ताइन, अभी इसे घर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर सारी जिम्मेदारी इसी ने संभाली है। जब से पल्लवी बहू बनकर हमारे घर आई है, हमें किसी काम की चिंता ही नहीं करने देती। किस्मत की धनी हो शुक्लाइन, जो बेटियां भी समझदार और गुणी मिली और बहू भी महादेव की कृपा से बेटी से कम नहीं है। वो तो हम हैं ही, और इसके लिए हम प्रभु का जितना आभार प्रकट करें कम है। अपनी बेटी बहू की तारीफ सुनकर जहां जयंती जी खुशी से फूले नहीं समा रही थीं, वहीं पल्लवी की माँ भी अपनी बेटी की तारीफ सुनकर खुशी से गदगद हो गई थी। खैर, बहू पुराण बंद हुआ और जयंती जी ने आहाना को हल्दी लगाते हुए रस्म की शुरुआत की। उनके बाद रिश्तेदारों, आस पड़ोस की औरतों सब ने आहाना को हल्दी लगाई। जब पल्लवी की बारी आई तो उसने भी अपनी दोस्त कम ननद को जी खोलकर हल्दी लगाई। उसके साथ अंतरा भी मैदान में कूद गई। यहाँ उसने आहाना को हल्दी लगाई तो पड़ोस की किसी औरत ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। लो बिटिया, दुल्हन की हल्दी लग गई, अब अगली डोली तुम्हारी ही उठेगी। हम डोली में नहीं, स्पोर्ट कार में जाएंगे और इतनी जल्दी हम आप सबका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, इसलिए सपने देखना बंद कीजिए, दिन में सपने देखना अच्छी बात नहीं होती, अंतरा ने तुनकते हुए फट से जवाब दिया और मुंह बिचकाते हुए वहां से निकल गई। औरतें एक दूसरे का मुंह ही तकती रह गईं। कुछ देर बाद वो अपने साथ जयेश जी, दृशांत और निशांत को भी लेकर आई। जयेश जी की नज़र जब हल्दी में लिपटी आहाना पर पड़ी तो वे एकदम से भावुक हो गए। आंखों के आगे सालों पुराना वो दृश्य घूम गया,
जब फूलों सी नाजुक नन्ही आहाना को उन्होंने पहली बार अपनी बाहों में थामा था। आज वही गुड़िया इतनी सयानी हो गई थी कि शगुन की हल्दी लगाए उनके सामने बैठी थी और 3 दिन बाद दुल्हन बनकर उनके घर आंगन से विदा होने वाली थी। जयेश जी भाविभोर हो गए, उनकी आंखें नम हो गईं और बेटी की जुदाई का दर्द सीने में टीस बनकर उभरा। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को पोंछा और आहाना के पास चले आए। आज आपको देखकर हमें वो वक्त याद आ गया जब हमने पहली बार अपनी नन्ही सी बिटिया को अपनी बाहों में थामा था। यकीन नहीं होता कि वक्त इतनी जल्दी बीत गया। हमारी नन्ही सी गुड़िया इतनी जल्दी इतनी सयानी हो गई कि अब 3 दिन बाद हमें उनकी विदाई करनी है। सही कहते हैं लोग, बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और उनकी विदाई का सोचकर हर बाप की आंखें भीग जाती हैं। उनकी पलकें एक बार फिर भावनाओं से भीग गई थी। जयंती जी आंचल में मुंह छुपाए अपने आंसू पोंछ रही थी और आहाना सर झुकाए सिसकने लगी थी। जयेश जी ने उसे रोते देखकर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल आहाना उनसे बिल्कुल उसी तरह लिपट गई जैसे बचपन में जयंती जी के डांटने पर रोते हुए अपने पिता के पैरों से लिपट जाया करती थी। आहाना की सिसकियों को सुनकर सभी भावुक हो गए और अपनी आंखों की नमी छुपाने लगे। जयेश जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे संभालने लगे। ना, रोते नहीं बच्चे, बेटी का कन्यादान करना हर माता पिता का सौभाग्य होता है। कहते हैं कन्यादान से बड़ा दान और कोई नहीं, क्योंकि उसमें एक पिता अपने जीवन भर की जमा पूंजी, अपने कलीजे का टुकड़ा अपनी बेटी किसी और को सौंप देता है और उस वक्त उस पिता के दिल पर क्या बीतती है कोई नहीं जानता। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खुद से दूर करते हुए हमारा सीना छलनी होगा, पर जगत की ये रीत निभाते हुए हम भी आपका कन्यादान करने वाले हैं और हमारी यही कामना है कि हमारी बेटी हंसते मुस्कुराते अपने इस घर से विदा हो और हंसी खुशी अपने नवजीवन की शुरुआत करे। जयेश जी ने किसी तरह समझा बुझाकर उसे चुप करवाया और अपने हल्दी से रंगे कुर्ते को देखकर मुस्कुरा उठे। शायद आहाना के बचपन की कोई खूबसूरत याद ताजा हो गई थी। अनु, गुड़िया, रोना नहीं है, दृशांत ने प्यार से उसे समझाया, जिस पर आहाना ने बस सर हिला दिया। दृशांत ने बड़े ही प्यार से अपनी गुड़िया के गालों पर हल्दी लगाई और एक उंगली से उसकी नाक को भी छू दिया। आहाना ने चौंकते हुए अपनी भीगी पलकें उठाकर दृशांत को देखा और वो हौले से मुस्कुरा दिया। आहाना के लब भी मुस्कुरा उठे, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी उसे। दृशांत हमेशा ऐसा ही करता था, जब जब उसे रंग लगाता गालों के बाद उसकी नाक जरूर छूता था। दोनों भाई बहन पुरानी हसीन पलों को याद करते हुए मुस्कुरा उठे। फिर दृशांत ने प्यार से उसके सर को चूम लिया।
उसके बाद निशांत उछलता हुआ आहाना के पास पहुंच गया। जीजी, हम भी लगाएंगे आपको हल्दी, उसकी इच्छा की आहाना ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। निशांत ने झट से दोनों हथेलियों में हल्दी लगाई और आहाना के गालों को रंग दिया। कुछ हंसी मजाक और कुछ आंसुओं के साथ आहाना की हल्दी की रस्म संपन्न हुई तो उसे वापस कमरे में ले जाया गया।